सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 12। ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आययानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सौवसाहूनं। अथ नत्वार्हतो क्षूण चरणान् शमनानपि तद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेश्यते। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है और उसमें भी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 42 पर, 42। यह श्रावकाचार्य का यह ग्रंथ है। सम्यक दृष्टि के पांचवे गुणस्थान में कैसी कैसी प्रतिमाएं होती है, उनका अंतरंग बहिरंग स्वरूप क्या है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। यहाँ अपनी बात अभी हमने, ये तो दूसरा अधिकार, दूसरा अध्याय हमारा शुरू हुआ है और वहाँ ये बात बताई थी कि जो त्यागने योग्य जान कर भी विषयों का त्याग नहीं कर सकता, मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता, और है तो सम्यक दृष्टि। तो वहां कहा था कि प्रत्याख्यानावरण के तीव्र उदय से, यानी उसकी कमजोरी है, तो वो मुनि धर्म अंगीकार करने के अयोग्य है। तो कहते उसके लिए श्रावक धर्म का उपदेश दिया है। मुनियों का तो ये कर्तव्य बताया है कि पहले में पहले हाँ मुनि व्रतों का उपदेश देंगे, क्योंकि कोई ऐसा है कि उसकी शक्ति है और मुनियों ने नीचे का उपदेश दिया इसलिए वहीं पर संतुष्ट होकर बैठा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये है तो सारे समय दृष्टि, यानी समय दर्शन तो प्रथम में प्रथम कर्तव्य है, उसके बाद रखते हुए ये बातें आगे सोचना है। तो यहाँ तो ये बात बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन से जो विशुद्ध जीव है, ऐसा जीव अहिंसा की सिद्धि के लिए, वो उसके अष्टमूल गुण आदि की जो बात है उसकी चर्चा अपनी चल रही थी, तो हिंसा का त्याग यानी अहिंसा का पालन करने के लिए मधु मद्य मांस और पांच उदुम्बर फल इनका त्यागी होता है, उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। 42 पेज पर हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ ऊपर पहले दो नंबर का तो हमने कल श्लोक पढ़ा था, उसी की बात चल रही थी यहाँ पर। तो यहाँ हिंसा के दो प्रकार है, जो नया पैराग्राफ शुरू होता है वहां से हम पढ़ेंगे, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा किसको कहना और द्रव्य हिंसा किसको कहना, सुशीला बेन आपको याद है? द्रव्य ने हाथ से किया और भाव ने सोचा मारने का। आप क्या कहते हैं नलिन में? भाव हिंसा ने बोलो,
भाव यानी जीव के जो परिणाम होते
हैं। हाँ, किसके परिणाम? मारने के,
मारने
के बचाने के। हाँ बोलो, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति, बचाने का परिणाम भी भाव हिंसा कहा, ये तो ये विशेषता है। सुना है कभी ये जैन दर्शन की विशेषता है। बचाने का भाव यानी शुभ भाव उत्पन्न हुआ, तो शुभ भाव उत्पन्न हुआ तो आत्मा में राग की उत्पत्ति हुई, यही हिंसा है, क्योंकि उसके स्वरूप का लक्ष्य छोड़कर किसी के लक्ष्य से उसको शुभ भाव की उत्पत्ति हुई है, तो उसको कहते हैं। तो मारने के भाव, तो भाव को तो सभी दुनिया मन से तो हिंसा की ऐसा कहेंगे, परंतु तो जो बचाने का परिणाम है वो भी हिंसा है, ये जैनियों की विशेषता। कालेलकर नाम के कोई साहित्यिक हो गए, उन्होंने कहा था जहां सबकी हिंसा अहिंसा की डेफिनेशन समाप्त होती है वहां जैनियों की शुरुआत होती है। हाँ, नॉन जैन पर्सन ने ये बात बताई। जैनियों तो कहेंगे तो जैनियों को भी पता नहीं है। तो देखो भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, द्रव्य हिंसा नहीं, हिंसा करना मन वचन और उसके द्वारा। मद्यादि के सेवन में अनुराग होना भाव हिंसा, यहाँ अलग पद्धति से बताया। पर हमने जो अभी परिभाषा देखी पुरुषा सिद्ध उपाय ने स्वयं आचार्य अमृतचंद जी ने कहा है। हाँ 44 नंबर की बात पुरुषा सिद्ध उपाय की, यहाँ कहते मद्यादि के सेवन में अनुराग होना भाव हिंसा है और मद्यपान से उसमें रहने वाले जीवों का घात होना या मांस के लिए जीव वध होना द्रव्य हिंसा है। यानी उसका खाना या प्राशन करने पर वहां के जीवों की हिंसा होती है वो द्रव्य हिंसा है और वो खाने के परिणाम जो है उसको यहाँ भाव हिंसा। इन दोनों ही प्रकार की हिंसा को छोड़ने से ही अहिंसा की सिद्धि हो सकती है और उसी के लिए सबसे प्रथम यह स्थूल त्याग कराया गया। शीरी फल कहते हैं बड़, पीपल बड़ समझते ना, बड़ वृक्ष, बड़ का बड़ा सा झाड़, उसके फल होते हैं छोटे छोटे। हाँ पीपल के भी वो तो चलेंगे रास्ते पर तो कितने छोटे छोटे वो तो। हाँ पाकर, गुलर और कठुमर। गुलर तो ये उम्बर और अंजीर वगैरह को गुलर कहते हैं। पाकर किसको एक्चुअली कहते हैं हिंदी में पता नहीं है, परंतु ये सारे ही उदम्बर फल है। उसमें वड़ और पीपल तो समझते हैं, अंजीर उम्बर भी पता है। हा? और कठुमर ये फनस भी ऐसी इसी जाति का है। इसमें इनमें साक्षात दृश्य जीव पाए जाते हैं। साक्षात यानी दिखने वाले, उड़ने वाले ऐसे दिखाई देते हैं। इसी से गुलर का एक नाम जंतु फल भी है। इन उसमें जंतु पाए जाते हैं, जंतु फल ही कहते हैं उसको। देखो नीचे एक नंबर का फुटनोट, उदम्बरो जंतु फलो अमरकोश। अमरकोश जैसे जो ये संस्कृत का बहुत बड़ा कोश है जिसमें समानार्थी शब्द बताए जाते हैं, यानी एक ही शब्द के लिए दूसरा जो कोई शब्द है उसके साथ ऐसे इसके सूत्र बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं अमरकोश। के ये उन्होंने उद्धरण दिया यहाँ पर। अब ग्रंथकार अपने तथा अन्य आचार्यों के मत से मूल गुणों को कहते हैं। अन्य अन्य आचार्यों ने एक रहेगी, अंजीर भी इन्हीं की जाति का है, जैसा उम्बर है वैसा ही अंजीर भी है, जिसको फिग कहते हैं। त्रस हिंसा से बचने के लिए इनका त्याग कराया जाता है। इसको तो नामधारी जैन कहेंगे, कुल परंपरा से भी इनका सेवन नहीं किया जाता है और इसको तो समझकर उसका त्याग करना चाहिए, ये भी आवश्यक बात है। इसकी तो चर्चा हमने कल देखी। अब क्या है कि अन्य अन्य आचार्यों ने ये जो अष्ट मूल गुण कहे हैं उनका अलग अलग पद्धति से कथन किया, उसकी बात यहाँ स्वयं ग्रंथकार बता रहे। अब ग्रंथकार अपने तथा अन्य आचार्यों के मत से मूल गुणों को कहते हैं, और ग्रंथकार ने भी कुछ अपने मन की बात मन कल्पना से नहीं की है, उनके लिए भी पुराने ग्रंथों का आधार ही उन्होंने लिया, जैसे महापुराण जो अन्य अन्य ग्रंथ है उसी के आधार से उन्होंने ये बातें बताई। 3 नंबर का श्लोक, अष्टैतान् गृहिणां मूल गुणां स्थूलवधा दिवा फलस्थाने स्मरेद्यूतं मधुस्थान इहैव वा। गृहिणाम यानी गृहस्थों के, अष्ट एतान यानी ये 8 क्या है मूल गुण, कौन कौन से, स्थूल वधादि स्थूल हिंसा आदि वा फलस्थाने स्मरे द्योतम मधुस्थान ही है युवा। देखो इसका अर्थ देखते हैं, आचार्य मध्य मांस मधु और पांच उदुम्बर फलों के त्याग को गृहस्थों के आठ मूल गुण मानते हैं, अथवा वायने अथवा अन्य प्रकार से कथन आता है। पांच फलों के त्याग के स्थान में पांच स्थूल हिंसा आदि, स्थूल हिंसा आदि में क्या समझना है? हाँ, स्थूल लगाना हर एक के साथ, हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह जो है उसके पहले पहले स्थूल शब्द लगाना, यानी स्थूल पापों का त्याग आदि के त्याग को गृहस्थों के मूल गुण कहते हैं। यानी मध्यम अंश मधु तो रखना और ये पांच उदुम्बर फलों के वहाँ स्थूल हिंसा आदि वो पांच बातें लिखना। जब हिंसा का त्याग कहेंगे तो ये उदुम्बर फल उसमें आ ही जाएंगे। अथवा मध्यम अंश मधु तथा पांच स्थूल हिंसा आदि के त्याग रूप आठ मूल गुणों में ही मधु के स्थान में जुए के त्याग को आठ मूल गुण मानते हैं। यानी मध्यम अंश मधु के बदले मध्यम अंश और जुए का त्याग, इस तरह से आठ अलग अलग पद्धति से गिनाए। जुआ यानी द्युत, जुगार, गैमलिंग, गैमलिंग, विशेषार्थ। आचार्य कुमकुंद और उमा स्वामी ने अपने श्रावकाचार के वर्णन में मूल गुण का कोई निर्देश नहीं किया। श्वेतांबर साहित्य में भी श्रावक के मूल गुणों की कोई चर्चा नहीं है। सबसे प्रथम आचार्य समंत भद्र के रत्नकरण श्रावकाचार में श्रावक के आठ मूल गुण कहे हैं। वे है मध्य मांस मधु के त्याग के साथ पांच अनुव्रत, यानी स्थूल पापों का त्याग। इन्हीं को ग्रंथकार ने वा शब्द से सूचित किया है। इन्हीं अष्टमूल गुणों में मधु के स्थान में जुआ का त्याग कर मध्य मांस और द्युत, द्युत यानी जुआ खेलना, जुगार जिसको कहेंगे, द्युत, जुआ, गैमलिंग, ये सब एकार्थवाची है। मध्य मांस और द्युत तथा स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल अब्रह्म और स्थूल परिग्रह का त्याग, ये आठ मूल गुण ग्रंथकार ने महापुराण के मत से कहे हैं और प्रमाण रूप से श्लोक भी उद्धृत किया है। स्वयं उन्होंने ही ये संस्कृत टीका भी रचना की है, पंडित आशाधर जी ने। और कौन से ग्रंथ के ये कथन है वो भी यहाँ मूल ग्रंथ के यहाँ श्लोक बताए हैं, उद्धरण दिए, रेफरेंसेस। किंतु महापुराण के मुद्रित संस्करणों में वह श्लोक नहीं मिलता। मुद्रित पहले इन्हें हस्तलिखितों में तो मिलता है, मुद्रित प्रतियों में वो नहीं मिल रहा। चारित्र सार में यह श्लोक उद्धृत है और वह भी महापुराण के नाम से। चारित्र सार में तो ये मिलता है और वहां उन्होंने उद्धरण दिया है महापुराण का, यानी ओरिजिनल ये महापुराण का श्लोक है। ज्ञात होता है आशाधर जी ने भी उसे वहीं से उद्धृत किया है। महापुराण में तो व्रतावतरण क्रिया में, व्रत अवतरण क्रिया, मधु मांस के त्याग तथा पंच उदुम्बरों के त्याग और हिंसादि विरति को सार्वकालिक व्रत कहा। सार्वकालिक सभी कालों में, तीनों कालों में इसको व्रत कहेंगे, यानी इनका तो त्याग होना ही चाहिए। क्या क्या बताया? मधु मांस, पांच उदुम्बर और हिंसादि विरति। मूल गुण का भी नाम नहीं है और न मधु के स्थान में जुए का ही त्याग कराया है। आगे जो पांच अनुव्रतों के स्थान में पांच उदुम्बर फलों के त्याग को अष्ट मूल गुणों में लिया गया, उसका प्रारंभ महापुराण से ही हुआ प्रतीत होता है। पुरुषासिद्ध्योपाय में भी सर्वप्रथम हिंसा के त्यागी को मध्य मांस मधु और पांच उदुम्बर फलों को छोड़ने का विधान है, किंतु उन्हें मूलगुण शब्द से नहीं कहा। ये मूलगुण शब्द वहां नहीं आया है बस, परंतु इसके त्याग को बताया है। सबसे प्रथम पुरुषासिद्धि उपाय में ही इन आठों में होने वाली हिंसा का स्पष्ट कथन मिलता है और इन्हें अनिष्ट, अनिष्ट नहीं तो इष्ट नहीं, अपने लिए अच्छा नहीं है, बुरा है, दुस्तर और पाप के घर कहा है। तथा यह भी कहा है इन आठों का त्याग करने पर ही सम्यक दृष्टि जीव जिन धर्म की देशना का पात्र होते हैं। ये पहले सम्यक दृष्टि शब्द कैसा डाला? सम्यक दृष्टि तो बाद में हो गई ना, देशना तो अभी मिली नहीं है।
अंदर लिखा है ये श्लोक 61 के दो नंबर
पर, मध्यम मांसम शौद्रम पंचोन्द्र फराणि यत्ने न हिंसा विपरति कामैर मोक्तव्यानि प्रथममेव। अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरितायतनानि अमूनि परिवर्ज जिन धर्म देशनायां भवन्ति पात्राणि शुद्ध धिया, शुद्ध बुद्धि वाले। शुद्ध धिया लिखा ना, उसके लिए समय दृष्टि काम नहीं, पात्र होते हैं, जिन धर्म के देशना के पात्र होते हैं, अच्छी बुद्धि वाले। ऐसा नहीं ना शुद्ध धिया का अर्थ वहां पर, क्योंकि हाँ समय दृष्टि करेंगे तो जिन धर्म की देशना उन्हें ऑलरेडी है ही, भद्र जीव जिन धर्म की देशना का पात्र होते। शुद्ध बुद्धि वाले ऐसा केवल वहां लिखना है। आगे बढ़ते इसके बाद आचार्य सोमदेव ने अपने उपासकाचार में और आचार्य पद्मनंदी ने पंचविंशतिका में स्पष्ट रूप से इन आठों के त्याग को मूल गुण कहा है और उन्हीं का अनुसरण आशाधर जी ने किया है। आचार्य अमित गति ने जो आचार्य सोमदेव और पद्मनंदी के मध्य में हुए हैं अपने श्रावकाचार में इन आठों के साथ रात्रि भोजन का भी त्याग आवश्यक माना है, किंतु उन्हें मूल गुण शब्द से नहीं कहा। ये सारे रेफरेंसेस बता रहे कहाँ ये शब्द आए हैं और कहाँ कौन से चीजों को आठ में सम्मिलित किया। देवसेन ने भाव संग्रह में भी अष्ट मूल गुण का निर्देश है, देवसेन के भाव संग्रह में अष्ट मूल गुण का निर्देश है न कथन है। शिवकोटि की रत्नमाला में, रत्नमाला ग्रंथ का नाम है, एक विशेषता है उसमें मत्य मांस और मधु के त्याग के साथ पांच अनुव्रतों को अष्टमूल गुण कहा है और पांच उदुमरों के त्याग वाले अष्टमूल गुण को बालगुण के कहा है, यानी प्राइमरी स्टेज पर प्राथमिक जिसको हम कहेंगे। पंडित आशाधर के उत्तरकालीन मेधावी ने अपने श्रावकाचार में मध्यादि तीन तथा पांच उदुम्बर फलों के सातिचार त्याग को स अतिचार त्याग यानी अतिचार सहित त्याग कर देना अष्टमूल गुण कहा है। और पंडित राजमल ने अपने पंचाध्यायी के उत्तरार्ध में आठ मूल गुणों का कथन करते हुए उनके बारे में जो विशेष कथन किया है वह इस प्रकार है कि व्रतधारी गृहस्थों के आठ मूल गुण होते हैं, कहीं कहीं अव्रतियों के भी होते हैं क्योंकि ये सर्वसाधारण है। क्या कहा? अव्रतियों के भी होते कहा ना, ये तो सर्वसाधारण है, हम तो इसको तो पात्रता में गिनते समय दर्शन के। यहाँ अभी देखना वो तो देशना का पात्र है बताया, ये आठ मूल गुण स्वभाव से या कुल परंपरा से चले आते हैं, इनके बिना न सम्यक तो होता है न व्रत। क्या बात बताई? ये अष्ट मूल गुण धारण नहीं किए करेगा, पालन उसका नहीं होगा तो न ही उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और न ही व्रतों की प्राप्ति होगी। इनके बिना जब जीव नाम से भी श्रावक नहीं हो सकता तब पाक्षिक नैष्ठिक और साधक की तो बात ही क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखो यहाँ विषय ये चल रहा है, श्रावक की बात है, ग्रंथ का नाम है सागर धर्मांगत, और उसमें अभी 11 प्रतिमाओं की बात चलेगी। यहाँ सबसे पहले अष्टम मूल गुणों की बात हो रही है, मधु यानी शहद, मद्य और मांस, इनका त्याग और 5 उदुम्बर फलों के त्याग की बात है। इनका त्याग तो सर्वसाधारण सबके होना ही चाहिए। कहते हैं कि कुल परंपरा से भी ये चल आता है कि जैनी है तो इनका तो सेवन नहीं ही करते, परंतु केवल कुल धर्म मानकर अंगीकार करेंगे तो बाहर जाकर दोस्तों के साथ भी उसका प्राशन होगा, उसका खाना पीना चलेगा। तो कहते हैं जिनेन्द्र भगवान ने इसका स्वरूप कैसे बताया, क्यों त्याग बताया, इसको जानकर उसको छोड़ना अंगीकार करना चाहिए। तो कहते हैं न इनके बिना न सम्यक तो होता है न व्रत, इनके बिना जब जीव नाम से भी श्रावक नहीं हो सकता, नाम से भी श्रावक नहीं हो तो जैन कहने के लायक भी नहीं हो सकता है, तब पाक्षिक नैष्ठिक और साधक की तो बात ही क्या है। ये पाक्षिक नैष्ठिक और साधक की बात हमने कहाँ देखी थी? पाक्षिक तो जो तो आया था ना, हाँ, जो 11 प्रतिमाएं हैं, हाँ शुरुआत में उसको पाक्षिक कहेंगे, मध्य की जो प्रतिमाएं वहाँ नैष्ठिक कहेंगे, पाक्षिक है ना, उसको पक्ष आ गया, जैनत्व का पक्ष आया है, समय दृष्टि तो है ही और उसने वो तो अनुव्रत आदि अंगीकार किए है, उसको निष्ठापूर्वक आचरण करता है तो मध्य की प्रतिमाएं उसमें आ जाती है, और आगे जो 11वें प्रतिमा वाले उसको साधक। जिसने मध्य मांस और मधु का और 5 उदुम्बर फलों का त्याग कर दिया है वह नाम से श्रावक है, जिसको हम नामधारी जैन कहते हैं, ये तो इतना तो आवश्यक है, उसके बिना भावधारी तो हो ही नहीं सकता। त्याग न करने पर नाम से भी श्रावक नहीं है, ये कब लिखा है? हाँ हाँ, उसके विशेषाद भले आजकल लिखा है परंतु ये मूल ग्रंथ तो 800-900 साल पहले की बात है। इस तरह विविध श्रावकाचारों में अष्ट मूल गुणों के संबंध में विवेचन मिलता है। ये अलग अलग जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं, कहाँ ये 8 में क्या क्या शामिल किया है उसकी बात बताइए। मूल प्रयोजन तो हिंसा आदि का त्याग करना ही है, अब यहाँ आगे चौथे की शुरुआत में बताते इस आगे। अब मध्य में जीवों की बहुलता होने से, बहुलता यानी प्रचुरता, अधिक मात्रा होना, उसके सेवन करने वाले इस लोक और परलोक को नष्ट करते हैं। इस लोक को नष्ट करते हैं क्या, अपना ये भोग और बर्बाद करते और आगे वाला वो भी बर्बाद होता है, यह बतलाकर उसको अवश्य छोड़ने का आग्रह करते हैं। आग्रह क्यों, उनका भला होगा उसमें सुनने वालों के कल्याण के लिए। हम ऊपर श्लोक पढ़ेंगे 4 नंबर का, यदेक बिंदो प्रचरन्ति जीवाश्चेत त्रिलोकीमपि पूरयन्ति यद्विग्लवाश्चे मम मुं च लोकम् यस्यन्ति तत्कश्यमवश्यमस्ये। इसका अर्थ देते नीचे देखो, जिस मध्य की एक बूंद से यदि उसमें पैदा होने वाले जंतु बाहर फैले तो क्या कहते हैं, मध्य की एक बिंदु में इतने जीव है, अभी उसमें तो है वो बाहर आ गए सब फैल गए पूरे, तो कहते तो समस्त संसार उनसे भर जावे, कितना पूरा लोक। तथा जिस मध्य को पीकर उन्मत्त हुए प्राणी अपने इस जन्म और दूसरे जन्म को भी दुख में बना लेते हैं उस मध्य को अवश्य छोड़ना चाहिए। ये पीने वाला तो वो दुखी नहीं, वो सुखी होने के लिए पीता है, क्यों पीता है हमको पता नहीं है, सुखी होने के लिए दूसरे को देख देख कर या दोस्तों में नहीं पिए तो क्या कहेंगे, अपने को बैकवर्ड माने, इसलिए अपना हम भी कुछ वीर्य वाले पुरुषार्थ वाले दिखाने के लिए पीते रहते हैं। स्टेटस होता है, अच्छा स्टेटस होता है, वो स्टेटस वहां पर पता चलेगा नरक में जाने पर। अब मद्यपान को द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का कारण बतलाकर उसको पीने वाले के दोष और नहीं पीने वाले के गुण, एक ग लिखा है वो गुण करना, गुण दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। हम श्लोक पढ़ेंगे। पीते यत्र रसांग जीव निवहा क्षिप्रम रियन्ते खिला काम क्रोध भय भ्रम प्रभृतय सावध्य मोद्यन्ति च तन्मद्यं रतयन्न धूर्तिलपरा स्कन्दीव यात्यापदं तत्पायि पुनरेकपादिवधुराचारं चरन्मच्छति। ये धूर्तिल नाम की चोर की कुछ कथा है, देखो नीचे पड़ेंगे। जिस मद्य के पीते ही मद्य के रस से पैदा होने वाले तथा मद्य में रस पैदा करने वाले, क्या कहते हैं इसका अर्थ समझ में आता है? बोलो बोलो मिली भाई, अरविंद भाई बताएंगे क्या कहा। मद्य के रस से पैदा होने वाले यानी इन जीवों की उत्पत्ति क्यों हो रही है? मद्य के कारण, मद्य का रस है उसके जो लिक्विड है उसी में इन जीवों की उत्पत्ति होती है। और दूसरी बात क्या, मद्य में रस पैदा करने वाले, हाँ टेस्ट टेस्ट उसकी जो आ रही है इन जीवों के कारण आ रही है। वो उनका सब होगा ना वहाँ, जो कुछ मलमूत्रा विषय जो कुछ चल रहा है उसका, उसके देह पड़े है, उसकी जो फर्मेंटेशन क्रिया हो रही है इनके कारण उसमें रस पैदा हो रहा है और उसके कारण ये पैदा हो रहे हैं। तो कहते मध्य के रस से पैदा होने वाले तथा मध्य में रस पैदा करने वाले जीवों के समूह, दो चार नहीं है पूरा लोक फैल जावे ना, असंख्यात हो गए उसमें, तो मद्यपान करते ही तत्काल मर जाते हैं तथा पाप और निंदा के काम, पाप और निंदा के साथ काम क्रोध भय भ्रम प्रमुख दोष उत्पन्न होते हैं। यानी इनके पीने से क्या क्या उत्पत्ति होती है, तो काम के परिणाम होते हैं, क्रोध है, भय है, भ्रम है। उस मद्य का व्रत लेने वाला, मद्य का व्रत लेने ने मद्य छोड़ने का जिसने प्रतिज्ञा की है, उस धूर्तिल नामक चोर की तरह विपत्ति में नहीं पड़ता। वो विपत्ति से बच गया होगा शायद कोई ऐसा। और उस मद्य को पीने वाला मनुष्य एकप नाम के सन्यासी की तरह दुराचार करता हुआ दुर्गति के दुख में डूबता है। ये दो यहाँ स्टोरीज कथाएं बताई है। एकप नाम का कोई सन्यासी है जो मद्यपी था और दूसरा कोई धूर्तिल नामक चोर था जिसने मद्य न प्राशन करने का व्रत लिया था। त्रस त्रस की उत्पत्ति, त्रस पाई थी। तो त्रस जीव है समझो, जहाँ त्रस है तो त्रस की शरीर के आधार से तो निगोद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, त्रस तो कम हो गई परंतु त्रसों के शरीर, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेन्द्रिय तीर्यंचों के शरीर और मनुष्य का शरीर जो ये औदारिक शरीर है इनके आधार से निगोद जीव राशि रहती है। निगोद क्या है कि एक एक शरीर में अनंत जीव है, इसीलिए इनके शरीर की मौत संज्ञा। और वो तो एक जीव मर गया ऐसा नहीं है, वो तो यानी जीव तो मर गया वहां से मान लेते हैं, तो ये जो चमड़ी है अन्य जो उसके जो अवयव है उसमें भी निरंतर निगोद जीवों की उत्पत्ति होती रहती है अनंत जीव, और वो मरते हैं उसको वापरने से, खाने से पीने से। यहाँ तो कहा उबलते हुए वो मांस पिंड में भी निरंतर जीवन की उत्पत्ति होती है। और उसके आप कहेंगे तो फिर उत्पत्ति होती तो हमारे कारण नहीं मरेंगे, नहीं मरते भी है और नए उसमें उत्पत्ति भी होती रहती है। हाँ बिल्कुल, कि इतने जीव है ये जानते हुए भी उसके खाने का पीने का परिणाम है, उसके दुष्परिणाम मालूम होते हुए भी उसके परिणाम है खाने के, यानी तीव्र लालसा। अभी आज तो सब मालूम है कि तंबाकू टोबैको खाने से वो मुंह का कैंसर तक हो जाता है, उसके पिक्चर भी कितने दिखाई देते हैं, सिगरेट पीने के दुष्परिणाम भी मालूम है, फिर भी जीव उसको क्यों छोड़ता नहीं। दारू पीने के भी दुष्परिणाम उसको मालूम है, अभी हिंसा की बात अलग रखेंगे तो भी इसके दुष्परिणाम मालूम होते हुए भी उसका सेवन करने का परिणाम जो है वो अत्यंत गुद्धता अत्यंत तीव्र लालसा बताता, क्योंकि वहां अपने लिए भी खुद के लिए वहां उसके दुष्परिणाम है ये पता है फिर भी वो करता है। एक निगोल शरीर में जीव कितने मालूम है, कितने आनंद, हाँ हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं, और ऐसा कब से हो रहा है तो अनादि से, तो सिद्ध राशि कितनी तो अनंत है, तो उससे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में है। और ऐसे बटाटा का एक टुकड़ा ले लो स्कंद, तो उसमें तो ऐसे असंख्य शरीर होते हैं, तो जीव कितने हो गए उसमें, तो हम तो कहने किसने देखा, क्योंकि हम फॉरवर्ड है ना थोड़े विज्ञान के हम अभ्यासी है, तो कहते किसने देखा, किसने देखा, अरे सर केवल ज्ञानी ने जाना है, उसको प्रत्यक्ष जाना है, जानकर बताया, जिसके सर्वज्ञ पर श्रद्धा नहीं है, उनकी वाणी पर श्रद्धा नहीं है, तो उनके तो ऐसे प्रश्न उठते हैं। इसलिए सबसे पहले में पहले सर्वज्ञ की श्रद्धा कराई जाती है, ये सारे अपने न्याय जो शास्त्र है उसमें सर्वज्ञ है कि नहीं है, क्यों है, कैसे उसकी सिद्धि की जाती है चारों अनुयोगों के द्वारा। अपना भी वो विषय नहीं है यहाँ पर, देखो विशेषांक पढ़ेंगे हम। मद्यपान से मनुष्य का मन आपे में नहीं रहता, कंट्रोल में नहीं रहता, वह मदहोश होकर धर्म को भूल जाता है, और धर्म को भूल जाने पर उसे पाप करते हुए संकोच नहीं होता। इसके साथ ही मध्य में जीवों की उत्पत्ति अवश्य होती है, उसके बिना मध्य तैयार नहीं होता। ये तो सड़ा गला कड़ी तैयार होते हैं, वो तो उसमें फर्मेंटेशन तो होता है, उसके बिना तो मध्य ही नहीं होता, और मद्यपान से वे सब मर जाते हैं। इस तरह मद्यपान में द्रव्य हिंसा तो होती है, यानी जीवों का वहां साक्षात मरण तो होता ही होता है, घात होता है। साथ ही मद्य पीने से काम सताता है, स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा पैदा होती है, सिर चकराता है, मूर्छित होकर गिर पड़ता है, कुत्ते उसके मुख में मूत्र कर जाते हैं, चोर वस्त्रादि हर लेते हैं, दुनिया उस पर हंसती है। ये मद्य पीने से केवल शराब ही नहीं लेना, सारे ड्रग्स लेना, इसलिए जो एडिक्शन पैदा करने वाले सबको इसमें ले सकते। जिनके कुल में शराब नहीं पी जाती उन्हें भी देव गुरु की साक्षी पूर्वक मद्यपान न करने का नियम लेना चाहिए। कल हमने इसकी बात की थी कि हाँ नियम पूर्वक इसका त्याग होना चाहिए, प्रतिज्ञा पूर्वक इसका त्याग होना आवश्यक। नियम लेने वाला धुरतिल नामक चोर की तरह प्राणों से हाथ नहीं धोता, और मद्यपाई एकप नामक सन्यासी की तरह अगम्यागमन और अभक्ष भक्षण करके दुर्गति में भ्रमण करता है। इन दोनों की कथाएं सोमदेव के उपासकाचार में वर्णित है। यहाँ उनकी कथाएं नहीं दी है, यह अन्य उपासकाचार्य ने श्रावकाचार में उसका वर्णन किया है। आगे आचार विशुद्धि का गर्व करने वालों के मांस भक्षण की निंदा करते हैं, यानी अन्य मति जो कुछ मांस भक्षण का जिसको कहेंगे कथन करेंगे या उसको ठीक है करेंगे, उनका निराकरण कर रहे हैं। स्थानेष्णन्तु पलम हेतो स्वतश्चा शुचिकश्मला स्वादिलालावदप्यद्यो शुचिमन्या कथन्नुत। नीचे उसका अर्थ है मांस स्वभाव से भी अपवित्र है और कारण से भी अपवित्र। स्वभाव से अपवित्र क्योंकि उसमें तो प्रत्यक्ष वो गंदगी दिखाई देती है, उसमें तो ये निगोद जीव तो है ही है, त्रसत जीव भी उसमें कितने ही पैदा होते हैं। एक बात, कारण से भी अपवित्र है ने? वो कैसे पैदा होते जीवों का घात करने से, वो भी अपवित्र है। ऐसे अपवित्र मांस को जाति और कुल के आचार से ही नीच लोग खाए तो उचित हो सकता है, किंतु ये है नहीं उचित, परंतु कहते एक बार उन्हें माफ किया जा सकता है, किंतु अपने को विशुद्ध आचारवान मानने वाले कुत्ते की लार के तुल्य भी उस मांस को कैसे खाते हैं, यही आश्चर्य। यानी अपने को श्रेष्ठ मानने वाले आचार, हमारे बड़े आचार वाले हम हैं ऐसा कहने वाले भी जो मांस खाते, यहाँ जैनियों की बात नहीं है, अन्य मतियों की बात है। विशेषा, स्थूल प्राणी का घात हुए बिना मांस पैदा नहीं होता, और स्थूल प्राणी की उत्पत्ति माता पिता के रज और वीर्य से होती है। स्थूल प्राणी ने बड़े प्राणी की बात यहाँ नहीं है, जो मांस भक्षण जो होता है रेगुलरली उसकी बात। अतः मांस का कारण भी अपवित्र है और मांस स्वयं अपवित्र है, अपवित्र है। देखो अंडे खाने वाले भी कहते हैं इसमें मांस नहीं है, ये कैसा है मांस, ये अंडा कैसा है, भिजरे, हाँ इसमें से आगे चलकर उसमें पैदा होने वाले नहीं, परंतु वह भी क्या है, वो माता का रज है, अनफर्टिलाइज्ड एग भी क्या है, नहीं समझे, अनफर्टिलाइज्ड एग यानी स्त्री बीज है, इसको माता का रज कहा जाता है। जैसे स्त्रियों में मंथली कोर्स में क्या होता है, खून के साथ वो जो स्त्री बीज है वो निकल जाता है, वैसी ये पोजीशन अनफर्टिलाइज्ड एग की थी। यहाँ जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं है, परंतु वो मांस का ही गोला है, मांस का भक्षण का दोष है उसमें। अतः मांस का कारण भी अपवित्र है और मांस स्वयं अपवित्र है। उस पर मक्खियां भिनभिनाती है, चील कौवे उसे देखकर मंडराते हैं, कसाई खाने को देखना भी कठिन होता है, ऐसे घृणित मांस को आज के सभ्य लोग तो होटलों में बैठकर खाते ही है, किंतु आप कहते 800-900 साल पहले इतना गंदा था, वो मक्खियां भिनभिनाती होगी, नहीं ये उसका विशेषार्थ जो लिखा है ना, विशेषार्थ वो पंडित कैलाश चंद जी ने लिखा, उस जमाने में होटल नहीं थे। और आप कहेंगे वो तो ये ऐसे गंदा तो नहीं मिलता ना, आजकल तो क्या है मॉल में चले जाओ तो यहाँ तो कुछ गंदगी नहीं लगती है क्या, ये माउस के जो कुछ रखे हुए होते उसको देखते तो कुछ गंदा नहीं लगता है, तो ऐसा करके जैनी भी खाते हैं। किंतु गंगा स्नान करके किसी से छू जाने के भय से, देखो ये अन्य मतियों की बात है, जो अपने को शुद्ध विशुद्ध आचारवान मानते हैं उसकी बात है, कि गंगा स्नान करके किसी से छू जाने के भय से, यानी वो छूता छूत मानते हैं ना, तो कोई छू नहीं जाए तो गीली धोती से ही, गीली धोती पहने, और दूसरी बात क्या, हाथ में मांस का झोला लिए आचारवान लोगों को देखा जा सकता है, जो मांस भक्षण में भी धर्म मानते हैं। वेद के अध्येता वैदिक विद्वानों ने लिखा है, देखो मांस भक्षण करने की उनमें जिसमें तीव्र लालसा है, उसमें तो वेदों में भी, पुराने वेदों में भी उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए, और उनके वेदों का ही उदाहरण देते कि उसमें ऐसा ऐसा बताया कि ऋग्वेद में देवताओं के लिए बैल का मांस पकाने की और कई संकेत दिए गए, भगवान के नाम पर स्वयं वहां पशुओं की बलि देते हैं और उनका मांस स्वयं भक्षण करते हैं, ये सारा विरोध है उनके। प्राचीन धर्म सूत्रों में भोजन एवं यज्ञ के लिए जीव हत्या की व्यवस्था है, ऐसा वो लोग कहते हैं। बृहदारण्यकोप निषद में जो बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न करना चाहता है उसके लिए बैल या सांड या किसी अन्य पशु के मांस को चावल और घी में पकाने का निर्देश है। धर्म सूत्रों में कुछ पशुओं पक्षियों एवं मछलियों के मांस के भक्षण के संबंध में नियम दिए गए हैं। इन्हीं को लक्ष्य करके ग्रंथकार ने उक्त कथन किया प्रतीत होता है, क्योंकि ग्रंथकार ने जो बताया है कि अपने को शुद्ध आचारवान मानने वाले भी ये मांस खाते हैं, तो ये कितना घृणा यानी घृणास्पद बात है, योग्य नहीं है। अन्य मतियों को लक्ष्य करके ये बात है। उस जमाने की बात है ना, 800 साल 900 साल पहले की बात है।
लेकिन यहाँ जो लिखा है ऋग्वेद में देवताओं के लिए बैल का मांस पकाने का संकेत दिया गया, लेकिन देवताओं को तो यह आहार होता ही नहीं, तो अमृतपान होता है।
अमृतपान होता है, यही बात है उनकी। ये तो सब अन्य मतियों ने मनगढ़ंत शास्त्र लिखे, इसी से तो सिद्ध होता है। जैन शास्त्र सच शास्त्र का लक्षण क्या है, कहीं पर विरोध नहीं है, पूर्वा पर विरोध नहीं है। हिंसा का तो सर्वत्र निषेध ही होगा, यहाँ अपना राग का पोषण करने के लिए बीच में ऐसे ऐसे कथन उनके मिलते हैं, क्योंकि रागी द्वेषी लोगों ने उसकी रचना की और उसमें और भी मिलाने वाले और मिले होंगे। लिखा है नहीं नहीं, ये तो सब अन्य मतियों की कथन बताते हैं और उसको रूल आउट करने के लिए यहाँ कथन बताते हैं।
और उनको ये भी मालूम है कि
ऋग्वेद उनके जो चार वेद है ना,
वो खाते
नहीं, अमृत झरता है उनके तो, और उनके तो देवता संबंधी भी सारे कथन जो है वो तो विपरीत ही है। ऐसे कोई स्वर्गों में भी देव नहीं होते जैसे उनके वर्णन आते हैं। आचार्य सोमदेव ने भी लिखा है, मांस स्वभाव से ही अपवित्र है, दुर्गंध से भरा है, दूसरों की हत्या से उत्पन्न होता है तथा कसाई के घर जैसे खोटे स्थान से प्राप्त होता है। ऐसे मांस को भले आदमी कैसे खाते हैं? यदि जिस पशु को हम मांस के लिए मारते हैं दूसरे जन्म में वह हमें न मारे या मांस के बिना जीवन ही न रह सके, तो प्राणी न करने योग्य जीव हत्या भले ही करे, किंतु ऐसी बात नहीं है, मांस के बिना भी मनुष्यों का जीवन चलता है। मनुस्मृति में मांस भक्षण का विधान भी मिलता है, विरोध भी। ये मनुस्मृति भी अन्य मतियों का ग्रंथ है, कहीं उसका निषेध किया है कहीं उसका पोषण किया है, यानी ये पूर्वापर विरोध की बात है। विरोध में लिखा है, जो व्यक्ति पशु को मारने की सम्मति देता है, जो पशुवध करता है, जो उसके अंग अंग पृथक करता है, जो मांस बेचता या खरीदता है, जो पकाता है परोसता है और जो खाता है, ये सभी मारने के अपराधी है। किंतु आगे ही लिखा है, न मांस भक्षण में दोष है, न मद्यपान में, न मैथुन सेवन में, ये तो प्राणियों की प्रवृत्तियां है, किंतु इनकी निवृत्ति का महाफल है। ऐसी कुछ उलपटी अटपटी बातें उनके ग्रंथों में पाई जाती है। जिनके त्याग का महाफल है उनका सेवन निर्दोष कैसे हो सकता है, यह स्व वचन विरोधा है, यानी अपना ही वचन बाधित हो जाता है। स्टेटमेंट्स ऐसे उल्टे पुल्टे कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। आगे कहा है, आगे कहा, किसने कहा है? आचार्य सोमदेव ने नहीं, मनुस्मृति में। हाँ, अन्य मतियों की, खरीद कर या स्वयं उत्पन्न करके या दूसरे से उत्पन्न कराकर देवता और पितरों की पूजा पूर्वक जो मांस खाता है वह दोष का भागी नहीं होता। अब इसके अगेंस्ट इसका समाधान, देवता तो अमृत पान करते आपने कहा ना, यहाँ लिखा भी है, और पुत्र के दान से मरे हुए पितरों का कोई संबंध नहीं रहता। जो मर गए तो वो कहाँ, उसके दान के कारण उनको क्या मिलना रहता है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। क्योंकि जो कुछ पूजा वगैरह करने को आते हैं, पितरों के नाम पर दान देते हैं, वो ले जाते हैं घर में, या उनको जो भोजन दिया जाता है कहते हैं ये हमारे पितरों को मिल जाएगा, वो कहाँ गए पता नहीं, कौन से भाव में गए हैं, कहीं एक केंद्र में पड़े हुए, कोई नरक में पड़े हुए, और इनके खाने से उनके पास पहुंच जाएगा, उनको दान देने से उनको उसकी प्राप्ति होगी। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। देखो ये अन्य मतियों में पूजा वगैरह भी कर रहे थे, कुछ यंत्र मंत्र बोलेंगे, कुछ करेंगे, कहीं नहीं नहीं, उससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कैसे मिलेगी ये शांति, कौन से रूप से उनके पास चली जाएगी? कोई मर गया और यहाँ हम जो उसके नाम से पूजा भी करते हैं तो क्या करते हैं, अपने मन की शांति करते कि उस वो जीव को कुछ पुण्य का फल मिलता होगा उसका, क्यों बोलो बोलो। हम अमेरिका गए थे और अटलांटा में कोई दो बहनें मिली थी, रोज सुनने को आती थी। एक बार कुछ हमको प्रश्न है कि हमारे माता पिता तो अभी नहीं रहे, उनकी फोटो है तो हम पूजा करते कहीं जाते तो फोटो लेके ऐसे भगवान के सामने उसको ऐसा झुकाते तो और वो सचमुच मानती थी कि उनको वो पुण्य का फल मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो जो मर गया है वो उसका जो पुण्य पाप का जो फल है, जो कोई परिणाम करके मर गया उसके कर्म जो बंधे वो साथ में ले गया, वो उसके उसमें अभी कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। आप पूजा करो, शांति करो, होम यज्ञ करो, कुछ भी करो, तो उस आत्मा की शांति के लिए उसको ये करना वो करना ये कुछ नहीं है।
आप ऐसा मानते हैं कि उनको झुका के उनको पुण्य मिलेगा, जैसे क्या करना महाबल प्राप्त करते,
ये अटपटी ऐसे कुछ मन से बातें लोग सोचने लगते हैं ना, आश्चर्य लगता है ना। ये तो मानते हैं हम ऐसा पूजा नहीं करेंगे तो उनके आत्मा की शांति, वो भटकती रहेगी, वो शांति नहीं मिलेगी, जहां भटकना है वो चली गई, अभी उससे कुछ लेना देना नहीं। ऐसा भी मानते हैं ना कि 13 दिन तक इधर आसपास घूमती रहती है, हाँ हाँ हाँ, इसके लिए दीपक जला के रखो या कुछ करो, बहुत भ्रमणाएं चलती है। देखो अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ 66,336 भोग हो जाएंगे। नहीं समझ, नहीं समझ। कोई जीव लब्धि अपर्याप्त में चला जाएगा, लब्धि अपर्याप्त समझते हैं, अकेला निगोध नहीं, पांचों कोई एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक लब्धि अपर्याप्त नहीं, और श्वास के 18वें भाग प्रमाण उसकी आयु होती है। मर गया और फिर उसी वैसे ही पर्याय में आया, फिर वैसे एक अंतर मुहूर्त में, कितना बड़ा अंतर मुहूर्त, 48 मिनट वाला, उसमें ऐसे कितने भोग हो गए, 66,336। और यहाँ तो उतने टाइम तक तो किसी को डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, अभी नींद में सोया होगा तो पता भी नहीं लगेगा ये मरा है कि नहीं मरा, और उसके कितने भाव पलट जाएंगे। मान लेते हैं यदि अपर्याप्त में चला जावे तो, है ना, तो कौन से भाव के लिए रोना है,
कौन से भाव के लिए रोना
है, हम उसके लिए रोते ही नहीं, अपने लिए रोते हैं। हाँ हाँ, तो पुत्र ने जो कई दान दिया है उससे पितरों का कोई संबंध ही नहीं रहता। मांस भक्षण में तो द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों ही होती है, अतः वह दुर्गति में ले जाने वाले पाप का ही कारण है। कहा जाता है कि वेद विहित हिंसा में पाप नहीं है, इन वेद में कही हुई हिंसा में पाप नहीं, ऐसा वो लोग ही कथन करते हैं। किंतु इस प्रकार के वचन प्रामाणिक न होने से उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कहा है ज्ञानहीन वृक्ष पूज्य है, उनके ग्रंथों में कहते हैं ये वड़ का पूजा करो, पीपल की पूजा करो, ये क्या है, वो एक इंद्रिय है और हम पंचेंद्रिय, उनकी पूजन करें। यज्ञ में बकरे का बलिदान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती, ये भी उनके ऐसे मान्यता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों की तृप्ति होती है, तो भोजन के प्रिय ऐसे जो है उन्होंने ऐसे बातें बताई है। छली देव आप्त है, छली यानी कपटी, माया मायाचारी, आग में हवी डालने से देव प्रसन्न होते हैं, इन्हें हवन वगैरह करते हैं ना। वेद के इन व्यर्थ वचनों की लीला कौन जानता है, ये सारे व्यर्थ वचन बकवास है, और उसी को वो सच्चा मानकर उसके अनुसार कार्य करते हैं। इससे बिल्कुल गृहित मिथ्या, तो गृहित मिथ्या बिल्कुल, ये अत्यंत विपरीत कथन है ये तो, परंतु इसका भी निषेध, क्योंकि हम समाज में घूमते तो ऐसे बताने वाले भी मिलते हैं ना आजूबाजू, और उस जमाने में तो कितने हो गए ऐसा। आजकल वेदों का भी अभ्यास उनको भी नहीं रहा है, न जैनियों को जैनियों के ग्रंथों का अभ्यास रहा है, परंतु वो ग्रंथ के नाम पर ये सब कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, ग्रंथों में भी खोटी रचनाएं कितनी कितनी उनके भी ग्रंथों में घुसेड़ दिए। जैनियों के तो खोटे ग्रंथ बने ही बने हैं, तो उनके भी ऐसे उसको कहते वो राक्षस वेद ऐसा उसको कुछ कहते हैं कि कहते मूल वेद भी नहीं रहे, उनमें भी ऐसे रागियों ने और जिनको मांस भक्षण करना है उन्होंने ऐसे ऐसे बीच में उसमें भी घुसेड़ दिए, और उसके नाम पर ये सब खोटी बात चलती रही। इससे स्मृति का स्मृति यानी मनुस्मृति, ये अन्य मति का ग्रंथ है, निम्न कथन भी अप्रामाणिक ही सिद्ध होता है। वो क्या कहते हैं, तिल जौ धान्य उड़द मूल फल देने से पितर एक मास तक तृप्त रहते हैं। मछली के मांस से 2 मास तक, अरे अरे हरिंडी के मांस से 3 मास तक, मेंढे के मांस से 4 मास तक, जंगली मुर्गी आदि के मांस से 5 मास तक, बकरे के मांस से हमें तो ये पढ़ने को भी अच्छा नहीं लग रहा है, रूरू मृग के मांस से 7 मास तक, ऐन मृग के मांस से 8 मास तक, रौरव मृग के मांस से 9 मास तक, सोर और भैंसे के मांस से 10 मास तक, खरगोश तथा कछुए के मांस से 11 मास तक, और श्वेत वृद्ध बकरे के मांस से 12 वर्ष तक पितर तृप्त होते हैं। बौद्धों का कहना है मांस तो जड़ है, न वह मरता है न उसे कष्ट होता है, जब वेदना और मरण दोनों ही नहीं होते तो मांस भक्षण में क्या दोष है, ऐसा मानने से तो जीवों को घात करने की भावना ही बढ़ती है। हाँ, छठे नंबर का नहीं, वो 7 नंबर का पढ़ेंगे, 6 नंबर का रेफरेंस है। हमारा 6 नंबर का तो हो गया, ये बौद्धों का क्या कहना है ये ऊपर के 6 नंबर में बताएंगे। तो कहते वो पढ़ा था अभी, ये जो लिखा है ना 6 नंबर और ऊपर जो 6 है वो बौद्ध मतियों के मान्यता है, तो ऐसा मानने से तो जीवों को घात करने की भावना ही बढ़ती है, उसके बिना जड़ मांस पैदा नहीं होता। कहा है मांस के स्वाद का लोभी प्राणी दूसरे प्राणियों को मारने में प्रवृत्त होता है, अतः मांस भक्षण निंद्य है। किन्हीं का कहना है, किन्हीं का कहने ना ऐसे कुछ छोटे मत वाले अन्य मति कि स्वयं ही मरे हुए पंचेंद्रिय प्राणी का मांस खाने में कोई दोष नहीं, उनको लक्ष्य करके थे। ये अन्य अन्य मति क्या क्या कहते हैं और ये एक सर्वथा निषिद्ध है खाना, उसके बाद यहाँ बता रहे। ऊपर देखते हिंस्र स्वयं मृतस्यापि शादश्नन्ना स्पृशन फलम पक्वा पक्वा ही तत्पेश्यो निगौतो घसुत सदा। स्वयं मरे हुए मच्छ भैंसा आदि के मांस को खाने वाला और छूने वाला भी हिंसक है, क्योंकि उस मांस की पकी हुई और बिना पकी डलियों में सदा निगोदिया जीवों के समूह उत्पन्न होते रहते हैं, और निगोद उत्पत्ति तो हमें पता है, एक साथ अनंत जीव की उत्पत्ति होती है। विशेषण पुरुषार्थ सिद्धोपाय में कहा है, ये किसने लिखा पुरुषार्थ सिद्धोपाय, किसने लिखा भूल गए, अमृतचंद्राचार्य। अमृतचंद्राचार्य का कोई दूसरा ग्रंथ मालूम है, और दूसरा आत्मख्याति, आत्मख्याति समय सार की टीका है, सभी सभी की टीका लघु तत्व पुरुषार्थ सिद्धोपाय में कहा है, स्वयं मरे हुए भैंसा बैल आदि का जो मांस होता है उसमें भी हिंसा होती है, क्योंकि उस मांस के आश्रय से जो निगोदिया जीव उत्पन्न होते हैं उनका तो घात होता ही है। कच्ची पकी हुई तथा पकती हुई मांस की डलियों में उसी जाति के निगोदिया जीव सतत उत्पन्न होते रहते हैं, अतः जो कच्ची या पकी हुई मांस की डली को खाता है अथवा छूता है वह निरंतर एकत्र होने वाले बहुत से जीवों के समूह को मारता है। क्योंकि उसको छूने से उसको वहां उनका घात तो होता ही रहता है, नए नए जीव उत्पन्न होते रहते, परंतु वहां रहने वाले उनका तो घात होगा ही होगा।
इसके साथ साथ एक बात भी
निरंतर होती है और
कपड़े की वस्तु वापरने का जो विशेष
बिल्कुल सही है, यानी वो तो जीव तो मर गया, अभी वो तो मांस भी सूख गया है चमड़ा, तो कहते अभी तो उसमें कोई दोष नहीं है ना, तो कहते उसमें भी निरंतर निर्गोधिया जीव की उत्पत्ति होती है। वो चमड़े की वस्तु है, कोई पाकिट है, चप्पल है, कुछ है, तो उसको वापर दे छूते है, तो कहते उसमें भी जीवों का घात होता रहता है। अभी चमड़े की वस्तु है, सिल्क की कपड़े है, उसमें भी क्या होता है, वो तो मालूम है कैसे उत्पत्ति होती है, लाखों बोतल तो जिंदा उसमें पानी में उबाला जाता है।
उसी जाति के
उसी जाति के अर्थ होता है कि उसके कलर वगैरह उस जाति के होते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि इसमें से कुछ अलग है, क्योंकि हम देखते हैं ना एनवायरमेंट में भी देखते हैं कि जैसे एटमॉस्फेयर का कलर है उस जाति के रंग के, वहाँ कीड़े भी कीड़े मकोड़े कितने उत्पन्न होते हैं, किसी वृक्ष की वो उसमें डाली पर बैठा हुआ पता ही नहीं लगता, उसी रंग का होता है। पत्तों के ऊपर जो बैठते हैं इल्ली वगैरह वो तो उसी कलर की होती है, फूलों में उसके कलर की होती है, मटर में ग्रीन कलर की होती है। ये तो नेचुरल है कि क्योंकि उससे वो डिफरेंशिएट नहीं होते ना, पता नहीं चलता कि वो कलर उस जाति का है, उसी पद्धति का है या उसी कलर का प्राणी है, तो उससे वो जुदा नहीं दिखाई देता, तो ये उनका संरक्षण का एक तरीका हो जाता है, ये तो नेचुरल की बात है।
तो तीन बातें बताइए, कच्ची पत्ती या पकी हुई,
हाँ
तीन अवस्थाओं में कुछ कुछ मतलब टाइप
के उत्पत्ति हो, यानी उस वातावरण में पैदा होने वाले वैसे वैसे हो जाते हैं।
इसमें साड़ियों में बाद में भी उसमें उत्पत्ति होती नहीं ना, वो उसको जो बनाने
परंतु वो हो गया ना, वो सारा वो एक प्रकार से मांस का ही हो गया ना, वो तो जीव मर ही गए और वो तो कोष उन्हीं ने तो तैयार किए थे ना,
चमड़े जैसा नहीं है,
चमड़े जैसा उसमें नहीं है, फिर भी वो तो वो उत्पत्ति उसकी इतने प्राणियों की हिंसा से होती है।
वो तो त्रस का एक
कौन से, वो त्रस है ना, हाँ तो त्रस त्रसों के शरीर में तो निगोदिया होगी नहीं, इतने अनंत जीव मर गए हो, त्रस का कभी ऐसे हवा में उत्पन्न हो गए जो फंगस वगैरह उसमें आते हैं, चमड़े के ऊपर गीली हवा में उसके ऊपर फंगस जैसे जो आते हैं, तो उसमें त्रस जीवों की भी उत्पत्ति होती है। हाँ अभी हम यहीं रुकेंगे क्या, ये पैराग्राफ पूरा करेंगे, हाँ ये ओके। आचार्य अमृतचंद जी ने जो बात तीन श्लोकों में कही है, आशाधर जी ने उसे एक ही श्लोक के द्वारा कह दिया है। आचार्य अमृतचंद से भी पहले आचार्य हरिभद्र ने अपने संबोध प्रकरण में प्राकृत गाथा में भी यही बात कही है कि मांस की कच्ची या पकी हुई डलियों में निगोदिया जीव सतत उत्पन्न होते रहते हैं और उनका घात अवश्य होता है। यही रुकेंगे हम, ऐसे निगोध क्या होता है उसके में बहुत चर्चा की थी, और तिलकांड में वगैरह की थी, कभी इसमें भी आएगी चर्चा तो करेंगे, अभी यही रुकेंगे।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ।